वन्दीनन्दाब्रजस्त्रीणां पादर्णुमभीक्ष्णश जसांहरिकथोद्गीतं पुनातिभुवनत्रयं जयास्तिकृष्णचैतन्यदयालप्रभुनित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासादि श्रीगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरुजी महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सपार्षद गौर हरि की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा संजीव की जय। भक्त विघ्न विनाशन कारिणी सिंहदेव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विष्णुप्रदाता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। ब्रजमंडल धाम की जय। ब्रजवासी भक्त वृंद की जय। ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्रणेश्वरी श्रीमती राधारानी की जय। ब्रजदेवीगण की जय। जय देवोत्थान एकादशी की जय। जय भीष्म पंचक की जय। गोरक्षेत्र महाराज तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। जय भक्त माधव गोस्वामी महाराज आविर्भाव तिथि की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत गौरभक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी एक कम कर दिन तो तो आज से भीष्म पंचक शुरू होता है। जो चातुर्मास्य व्रत था जो एकादशी से शुरू होता है देवशयनी से आज देवोत्थान में उसको समाप्त होता है। पांच दिन आज से लेकर के पूर्णमासी तक भीष्म पंचक पांच दिन। हाँ, ये जो भीष्म पंचक है इसका यथार्थ तात्पर्य केवल भीष्मदेव के ऊपर ही नहीं, भीष्मदेव के पहले से ही ये शुरू हुआ और होते रहे। तो इसका तात्पर्य क्या है? कहते हैं जब भगवान चार महीना के बाद आज उठते हैं तो इसका नाम है प्रबोधिनी। हाँ, समस्त देवता लोग और आदिगुरु ब्रह्मा समस्त ऋषि महर्षि सभी क्षीर समुद्र के किनारे जाकर के भगवान के लिए सुंदर अर्चन कीर्तन और सब प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। उनके शिविग्रह को लेकर के शोभा यात्रा निकालते हैं और नगर भ्रमण करते हैं और उनको सब प्रकार से उपहार देते हैं और अपने को समर्पण करते हैं। तो यहाँ तक तो साधारण नियम है। और उस तरफ में क्या कहते हैं? शांतरस के जो भक्त हैं जो हृदय में सदा सर्वदा प्रभु का ध्यान करते हैं वो भक्त लोग आज सबसे पहले प्रभु को देखा। प्रभु हृदय में जैसे फूल खिलते हैं सुंदर प्रकाशित हुए, जो कि लोग परमात्मा के रूप में दर्शन करते हैं। और शांत रस के भक्त लोग सब समय प्रभु को ध्यान में लाते हैं। आज प्रभु को देखा, प्रभु स्वयं प्रकट हो गए। और दास्य रस भक्त वो इंतजार करते हैं। तो दूसरे दिन दास्य रस के जितने भक्त लोग हैं प्रभु के जागरण के बाद उनके बहुत भारी अनुष्ठान मनाते हैं, उत्सव आदि और सेवा का जो उत्तम से उत्तम सेवक है या सेवा का प्रकरण है सब कुछ लेकर के प्रभु के निकट हाजिर होते हैं। तीसरे दिन क्या कहते हैं? सख्य रस के भक्त लोग और उपासक लोग और उनके सख्य रस की सिद्धि होता है, अर्थात भगवान स्वयं उनके साथ मित्रतापूर्वक उनके प्रेमालाप करते हैं और उनके सेवाओं को स्वीकार करते हैं। चतुर्थ दिन वात्सल्य रस वाले का अधिष्ठान है, अर्थात सभी माता पिता जो लोग जैसे पहले कश्यप, अदिति, द्रोण, धरा, बसु, ये लोग जो उपासना आदि की थी तो उनका साधना में सिद्धि, अर्थात भगवान उनके पुत्र के रूप में आविर्भूत होते हैं। और हाँ, पहले शांतर भक्तों के हृदय में आप प्रकाशित होते हैं, तो दूसरे दास्यों के निकट प्रकट होकर के उनकी सेवा लेते हैं, तीसरे में सुख रसों का, सखाओं का, मित्रों का, हाँ, कुटुंब परिजनों के साथ उनका आलाप आलोचना, उनके सेवा का प्रकरण सब कुछ ग्रहण करते हैं। फिर वात्सल्य रस में भगवान खुद अपने को समर्पण करते हैं कि सख्य रक्ष तक तो बराबरी है, वात्सल्य में भगवान अपने को समर्पण कर देते हैं। अब मैं आपका पाल्य हूँ, आप मेरा पालक हैं, हाँ, उस समय कि भगवान नहीं कहते कि मैं आपका पालन पोषण करूँगा। गोपाल को देख कर ही रसा माता कभी नहीं सोचती है कि इनका ये मेरा पालन पोषण करेगा, हाँ, किंतु दास लोग सोचते हैं मैं सेवक हूँ, सेवा करूँगा, मुझे स्वीकार करेंगे, किंतु मेरा पालक प्रभु ही हैं। और शांतरस के तो सब समय प्रभु का ध्यान करते हैं, चिंता करते हैं, सख्य में भी प्रभु के ऊपर भरोसा है, वात्सल्य में ऐसा नहीं, प्रभु का पालन हम करेंगे। और प्रभु भी नहीं कहते कि मेरा पाल्य है, मेरा लाडले हैं। अब इससे आगे जब जाएंगे, यहाँ तक संपूर्ण समर्पण नहीं है, और पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप से समर्पित है कौन, देह मानस देह गया जो कि मोर और पिन तुआपदे नंद किशोर, हे नंद किशोर, मैंने अपना जो कुछ है सब आपके निकट समर्पण, अब आप यथेष्ट इसको स्वीकार करें, व्यवहार करें और जहाँ लगाए ठीक है। और फिर आगे और भक्त क्या कहते हैं, आत्मनिवेदन तुआपदे करी होइनु परम सुखी, दुख दूर गेलो, चिंता न रहिलो, चौधरी का आनंद देखी, अशोक अभय अमृत आधा तुम्हार चरण दय, ताते एखन विश्राम लोहिले लोभिया छाड़िनु भवे रे भय, हैं आत्मनिवेदन उसमें आता है। ये आत्मनिवेदन में केवल आत्मा तक नहीं, वर्तमान में आत्मीय सज्जन कुटुंब परिजन जो कुछ है सब कुछ भगवान के लिए समर्पित है। जो दो लोग भगवान के विमुख है, विरोधी है, तो उनसे उनका कोई मतलब नहीं। इससे जब मीराबाई ने तुलसीदास जी के लिए पत्र लिखा कि क्या करूं, सत्संग में जाना नहीं देते हैं और हम गोपाल प्रभु की सेवा करते गिरधर की नहीं करने देते हैं, कथा कीर्तन नहीं करने देते हैं, न ग्रंथ पढ़ने देते हैं, सारा दिन बोले मेरी सेवा करो, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही राजा हूँ, मैं ही मालिक हूँ, तुम्हारे पोती हूँ, परमेश्वर हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई नहीं है और हम लोग के बिना तुम किसी को सोच नहीं सकते। आज तुम यदि स्वेच्छाचारी व्यभिचारिणी हो तुम दूसरे की सेवा करो, किंतु करने नहीं देंगे। इससे पहरेदार लगाया और बहुत अड़चन कर दी, शासन तिरस्कार बहुत कुछ अत्याचार करते हैं, क्या करें, हमें कुछ सब बर्दाश्त कर सकते हैं किंतु जहाँ सत्संग नहीं है तो वहाँ कुछ भी नहीं है, तो सत्संग में जाने नहीं देते, न साधुओं को आने देते, न कुछ भगवत कथा कीर्तन और चर्चा करने देते। तब तुलसीदास जी ने चिट्ठी का उत्तर लिखा, जिनके प्रियन राम वैदेही त्यजिए कोटि बैरिसम यद्यपि परमेश्वर नहीं, तजो पिता प्रहलाद बंधु विभीषण भरत महतारी बोली गुरु तजो कंत ब्रजवनितान भय जग मंगलकारी, जगत का मंगल तभी होगा यदि भगवत विरोधी कोई व्यक्ति है तुरंत उसको त्याग देना है, देर नहीं, चाहे कितना भी प्रिय हो तब भी उनको त्याग देना है, उससे कोई मतलब नहीं, ताल्लुकात नहीं है। तो ये ब्रजवनिता जो ब्रजदेवियाँ हैं, इन लोगों ने पति पुत्र सज्जन बांधव आर्य पद सब कुछ त्याग दिया, केवल मुकुंद पदवी, मुकुंद के चरण कमलों के आश्रय करके इतना बलवान हो गया, शक्ति धारण किया कि उनको किसी की परवाह नहीं। तो ये भीष्म पंचक में पांच रसों की उपासना है, उसमें भूत बलवान, जैसे सबसे पहले आकाश है, शून्य है, उससे अधिक है वायु देवता, उसमें शब्द और स्पर्श दोनों हैं, इसके बाद में कहते हैं अग्नि है जिसमें रूप भी है, हैं, और स्पर्श भी है, और उसमें हैं शब्द भी है। इसके बाद कहते हैं जल है, जल में चारों चीज़ विराजमान है, और पृथ्वी में पांचों रस विराजमान है। तो कहते परपरभूत आकाश आदि परपरभूत, ऐसे ही समझना चाहिए हरि की विश्व पंचक में हैं ये रसों का उपासना है। आखिरी में जो चातुर्मास्य व्रत किया विश्व पंचक में उसका पुष्टि होता है, संपूर्ण रूप से धारण करने का सामर्थ्य हो जाता है। तो आज से शुरू होता है विश्व पंचक। बहुत साधारण भक्त लोग पाँच दिन ये लोग फलाहारी करते हैं, कोई निर्जला व्रत करते हैं, किंतु इससे कोई अधिक लाभ नहीं होना है। इंद्रियों को सताने से कुछ साधन नहीं होता है, हैं। आप इंद्रियों को यदि इंद्रिया छोड़ भी देंगे, आग में डाल भी देंगे या फांसी में लटका देंगे, उससे भगवान का क्या प्रसन्नता है, हैं? इसको खाना नहीं दिया, उपवास किया, इसका क्या मतलब है? शरीर को तंग करने से इससे भगवत प्रीति विधान तो है नहीं, न आत्मा का संतुष्टि है। ये शरीर को सताते हैं मूर्ख लोग, हैं। क्या करेंगे, बोलेंगे तुम मोटे हो गए, अब तुमको 40 दिन पानी पी के रहना है, और नहीं तो खाना नहीं खाना है, निराहार करना है। ये सब कल्पना मात्र है, इससे कुछ होना नहीं है। ये आत्मा को, आत्मा का उसमें कोई उन्नति नहीं हो सकता। मन को सताओ तो गुफा में बंद करके दरवाज़ा बंद कर दो, और बड़े पत्थर लग दो, धीरे धीरे कमज़ोर हो जाओ, उठ नहीं पाओ, खाना नहीं खाओ, फिर धीरे धीरे निर्वाण लोक अर्थात मर जाओ। तो इससे क्या हुआ, भगवान की क्या उपासना हुई, और आत्मा का क्या कल्याण हुआ? इसे कहते ये सब पागलों का पागल खाना है। एक है दुनिया में एक दल बना लिया, मेरा ये ग्रुप है, मेरा ये मतलब है, तुम हमारे मतलब के साथी हो जाओ, हैं, बस दुनिया को पागल बनाते, उल्लू बनाते हैं। ऐसे नहीं होता है। इसलिए जिसमें देखना है परमात्मा की कुछ प्रतिविधान है, सेवा है, और उनके साथ संबंध है, आत्मा का उन्मेष है, आत्मा का स्वरूप का ज्ञान होना ही सब कुछ नहीं है। आत्मा का यदि नायमात्मा बल ही नैन लभ्य, यदि आज चिद्बल नहीं मिला, आत्मा का जागृत तो नहीं हुआ, अर्थात आत्मा जन्म नहीं लिया, आत्मा बीज के रूप में अभी पड़ा हुआ है, यह आत्मा भटकते हुए कभी किसी जोनियों में किसी माँ के पेट में पहुँचता है तो उनको स्थूल और सूक्ष्म शरीर मिलता है। कभी गाय भैंस बैल कुत्ता बिल्ली मनुष्य गंधर्व देवता दुनिया भर की, किंतु यह स्थूल शरीर मिलता है। आत्मा का शरीर देने वाला इतना सामर्थ्यवान न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, न कोई जोगी है, न भोगी है, कोई नहीं आत्मा का शरीर दे सकता। आत्मा बीज के रूप में सदा वर्तमान है। केवल यह आत्मा का ये जो बीज है, इसको श्रवण कीर्तन जल से सिंचन करने से, वो भी अनुरागमय रागानुगा भक्तों का, रागात्मिक ब्रजवासियों का, हाँ, वो रसपान करने से ये आत्मा तब अपना जन्म ग्रहण करेगा। तब मालूम होगा कि आत्मा क्या है, दास है या सखा है या माता पिता है या अपना प्रेयसी है, प्रिया है, कौन है, तब पता पड़ेगा। इसके पहले सब साधन केवल मात्र पुण्य है, नहीं तो शुभ कर्म है, नहीं तो सुकृति है, इसका कोई मूल्य नहीं है। ये भोग करने के बाद समाप्त हो जाएगा। तेतंग भुक्ता स्वर्गलोकम विशन्ति खिने पुण्य काम काम गतागत लभन्ति। वो कितना भी पुण्य करो, यज्ञ करो, दान करो, व्रत करो, क्या फल होगा? और स्वर्गलोक जाएंगे, ब्रह्मलोक तपलोक सत्यलोक, आने तो नीचे जाएंगे, तल अतल बीतल तलातल सुतल पाताल, तो 14 भुवन में भ्रमण करते रहेंगे, आपका छुटकारा मिलेगा नहीं। विरजा पार कर नहीं सकते, ब्रह्मलोक पार कर नहीं सकते, शिवलोक पार कर नहीं सकते, वैकुंठ की गति नहीं होगा। इसलिए आत्मा का यदि जन्म लाभ करना है, अर्थात आत्मस्वरूप उपलब्धि करना है, आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होना है, तो ये उपासना करना है, आराधना करना है। कैसे? केवल भूखे रहने से नहीं होगा, भगवत रस पान करना पड़ेगा, भगवत महाप्रसाद ग्रहण करेंगे, भगवत चरणामृत ग्रहण करेंगे। और भगवत प्रसाद कैसे प्रसाद है? भगवत प्रसाद जैसे प्रसादात भगवत प्रसाद हो, भगवान की जो कथा है, कीर्तन है, उसमें हम सम्मिलित होंगे। केवल मात्र भगवत उच्छिष्ट अधरामृत यही प्रसाद नहीं। इसलिए जब तक कृष्ण के वंशी ध्वनि नहीं सुना, तब तक वो अधरामृत पान नहीं किया, तब तक आत्मा का आकर्षण नहीं है। वो आत्मा जन्म लेकर के भी ब्रज में पड़े थे, जब कृष्ण के वंशी ध्वनि सुना तब उताला होकर के पागल होकर के चल दिया। कहाँ चल दिया? कृष्ण के निकट जाएंगे, किंतु जाना नहीं दे रहे, दरवाजा बंद कर दिया, लटले खड़े हो गए। बोले ठीक है, तुम्हारा शरीर है ये छोड़ देता हूँ, छोड़ देती हूँ, ले लो शरीर, मुर्दे को लेके खाओ चाटो, और उसको लेकर जो कुछ करना है करो, मैं तो चला। क्योंकि आत्मज्ञान हो गया, आत्मस्वरूप उपलब्धि हो गया, आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। और ये चमड़ी और दमड़ी से कौन गिने? यूँ तो छोड़ना ही है, आज न काल काल न परसों परसों न बरसों, तो पहले ही छोड़ दे। किंतु ऐसा नहीं, सुसाइड नहीं, ये भी ध्यान रखना है। फांसी लगा लिया, छोड़ दिया, चल दिया, जहर खा लिया, चल दिया, ये इससे लाभ नहीं है। ये शरीर को चोला को कैसे कपड़ा उतार के रख देते हैं, ऐसे छोड़ने की सामर्थ्य आ जाना चाहिए। इच्छा मृत्यु, भीष्म पितामह का इच्छा मृत्यु था, हमारा इच्छा हो तो हम छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। तो इतना ज्ञान तो हो, सामर्थ्य तो हो, तो ब्रजदेवों का साधन सिद्ध, उन लोगों ने देखा ये शत्रु का कर रहा है, नहीं जाने दे रहा है, ठीक है लो। और किंतु जुगमय ने क्या कर दी? देखा दे विरोध होगा, झगड़ा होगा, झंझट होगा, इससे एक छाया मूर्ति, माया का मूर्ति और बना दी। ले तुम्हारे पास में तुम्हारा मूर्ति है, तुम्हारे बच्चे पाल रहा है, तुमको खिला रहा है, पिला रहा है, तुमको देखभाल कर रहा है, और असल आत्मा का स्वरूप से पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? कृष्ण के निकट। तो इसलिए वो वंशी ध्वनि अर्थात क्लिंग जो बीज मंत्र है, ये बीज मंत्र को जब प्राप्त करते हैं, उनका आराधना उपासना करते हैं सुस्थ रूप से, तब आत्मा उनमें या आत्मा जागृत होता है, आत्मा अपना शरीर को प्राप्त करता है। तो आज से ये भीष्म पंचक 5 दिन के लिए हैं, ये आत्मा का साधन है, अर्थात परमात्मा के निकट समर्पण करना है। कहते हैं कि जानी किवले तुम्हार धामेते होइनु शरणागत। कहते हैं सबसे पहले भगवत धाम अर्थात आश्रय, धाम में शरणागत होना है। धाम स्वरूप कौन है? बलदेव प्रभु। धाम स्वरूप कौन है? गुरुपाद पद्म, वैष्णव जन। बस अभी तो बहुत दूर की बात है, हम आत्मनिवेदन नहीं कर पाते हैं, और हम क्या मानस देह गया जो कुछ है हम समर्पण नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए पहले धाम का आश्रय करो, धाम आश्रय करके अर्थात गुरु का पदाश्रय करके, बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु का आश्रय करके उनका अनुगत्य में सेवा करना है। कल रात को हम लोगों ने सुना, सेवा साधक शरीर से करना है, सब समय एक मिनट फुर्सत नहीं देना है, इसको सेवा में लगाना है। और सिद्ध पुण्य चत्र ही सिद्ध स्वरूप का आत्मस्वरूप का चिंतन करके मानसिक सेवा करना है, दोनों एक साथ होगा। यदि शरीर से करेंगे तो कर्म होगा, और वो कर्म का फल दे देगा छुटकारा। इतना काम किया, कितना मेहनत है, कितना मेहनत आना है, एक घंटे का 500 रुपये, किसी का 5,000 रुपये, किसी एक घंटे का 5,00,000 रुपये हैं, ये 5 करोड़ रुपया, इतना दे के छुट्टी जाओ। किंतु मालिक कहेगा नहीं, तू मेरा है और मैं तुम्हारा हूँ। नौकर को पैसा देके नौकरी से तनख्वाह देके मेहनताना देके विदाई कर देगा, ऐसे विदा करने से कोई लाभ नहीं है। ये कर्मी कर्म करने से लाभ नहीं है, वो मेहनताना लेके अलग होना पड़ेगा। किंतु प्रभु तो कहे तू मेरा है, या मैं तुमको अपनाया, या तुमने मेरे को अपनाया, वहाँ दो विचार आता है, एक तो मैं प्रभु का हूँ है, और तो उससे कहने से लाभ नहीं है, प्रभु स्वीकार कर ना करे। यदि प्रभु कहते हैं है, मैं तुम्हारा हूँ, ये भी बहुत दूरी की बात है, है। यदि मैं प्रभु का नहीं हूँ, प्रभु मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। यशोदा माता का ये ममता है, ब्रज देवियों का ये ममता हाँ, ये अनमोल है। मैं सब कुछ करूँगा करूँगी प्रभु के लिए है। यह नहीं कि मैं आपका हूँ, आप आदेश देंगे तो मैं कुछ करूँगा, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, ये तो गुलामी है, स्लेव है, सर्वेंट्स है, ये कोई मतलब का नहीं है, हैं अड़दाली है, चमचे हैं, है, ये कोई मतलब का नहीं है। जो ममता से युक्त होकर के प्रभु की सेवा कर सकता है, क्योंकि प्रभु मेरे हैं, तो मैं प्रभु का नहीं हूँ वो पीछे की बात है, मैं हूँ नहीं हूँ ये सोचने की नहीं है, आप मेरे हैं, मैं सब कुछ करूँगा, तो ज़बरदस्ती करूँगा अपने स्वतंत्रता इच्छा के अनुजाई, यहाँ ही कठिन हो जाता है। मनमानी कोई कुछ करता है तो उसका वो कामयाब नहीं है, काम उसका विपरीत फल हो जाएगा है। वो कौन से बुलाता है, आ जाओ मल्ल युद्ध करो, चारण मुष्टिक लड़ता है, प्रभु को बड़ा आनंद आता है, वीर सदन करते हैं, सल तो सल क्या मस्ती करते हैं, कुश्ती कसरत कर रहे हैं, किंतु वो क्या वो सोचते हैं प्रभु मेरे हैं या मैं प्रभु का हूँ, नहीं, उनका विरोधी भाव है। इससे अव्याप्ति अनुव्याप्ति दोष रहित युक्त है, ये दोष रहित होना चाहिए, ममता युक्त होना है, किंतु उनका अनिष्ट साधन करने के लिए नहीं। हम कर क्या सकते हैं, फिर भी ऐसा विचार नहीं आना, और वो भी नहीं मैं भगवत उपासना करूँगा और दूसरों को सताऊँगा, दूसरे के उपकार नहीं सोचता हूँ, भलाई नहीं सोचता हूँ, सेवा नहीं करता हूँ, केवल बस दूसरे को कैसे दबाऊँगा और मैं बड़ा बनूँगा, मेरी पूजा और प्रतिष्ठाएँ होंगी, बस ये सब विचार यदि रहता है तो ये दोषयुक्त है, ये ग्रहणीय नहीं है, फिर आत्मा का उन्मेष नहीं हो सकता है, फिर यही जड़ाकांक्षा लेकर के कभी राजा कभी देवता कभी गंधर्व कभी किन्नर कभी यक्ष ऐसे जोनी में भ्रमण करेंगे। इसलिए आज से विश्व पंचक एकदम एकांतिक होकर के ये पांच रसों के जो अधि देवता है इन लोगों के शरणागत होकर के आश्रय लेकर के आराधना करना है तो आगे की उन्नति है। और आज जब ये स्वयं एकादशी होता है, देवोत्थान एकादशी होता है, देवता लोग सब आकर के प्रार्थना करते हैं, भगवान को जगाते, अर्थात भगवान तो जगे हुए है ही है, उनको क्या जगाएंगे, किंतु कहते हैं हमारा प्रार्थना स्वीकार कर लो, चार महीने के लिए तो आप भक्तों के निकट रहे, अब चलो आओ। तो आज के दिन में हमारे गोरक्षदास बाबा जी महाराज, उनका तिरुभाव तिथि है हैं, और नित्य धाम में नित्य जगत में वो की यात्रा की। तो बाबा जी महाराज पहले तो ब्रज में भजन करते थे, कभी राधा कुंड में, कभी वृंदावन में, कभी सूर्य कुंड में, सर्वत्र ब्रज में भ्रमण करते, गोस्वामियों की तरह एक जगह नहीं रहते, और रघुनाथ दास गोस्वामी के पदांग को अनुसरण करके अपना साधन करते, सब समय कीर्तन करते, कोथाए गो प्रेमोई राधे राधे हैं, कृष्ण का भजन नहीं है, ये मुश्किल है, कृष्ण भजन नहीं राधा भजन हैं, ब्रजदेव की उपासना, तो ये साधारण बात नहीं है। अब बाबाजी महाराज सर्वत्र ब्रज में सर्वत्र गमनागमन करते, कभी राधाकुंड में कितने दिनों तक अनहार अनिद्रा और सारा दिन अपना मंत्र और जप कर ध्यानस्थ है, कभी सोचते मेरे को सिद्धि नहीं हो रहा है, अर्थात राधा दर्शन नहीं हो रहा है, तो राधा कुंड के मिट्टी उठा करके खा लिया। ये रज में तो राधा रानी का चरण रज है, ये यदि अंदर जाए तो ये चरण रज जरूर मुझे कृपा करेंगे, और दूसरा वस्तु दूंगा नहीं। जब दूसरा वस्तु दूंगा उसका गुणमय है, हैं या तामसी या राजसी या सत्वगुण, हमें तो निर्गुण चाहिए। तो उन्होंने इतना सारा रज उठाकर खा लिया, तो उनको कोई फर्क नहीं। किंतु कुछ दिनों में उनका आँख की रोशनी गई, तो उनको कोई फर्क नहीं है, आँख है नहीं है तो उनको कोई फर्क नहीं है, उनको शरीर से ही मतलब नहीं, तो फिर क्या है। आ गए वृंदावन में, और वृंदावन में वो भजन करते हैं, तो सुबह तक माला कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। शाम को देखा भंगी आती है, सुबह सफाई करने शाम को टोकरी लेकर आती है, सबके घर से एक एक टुकड़ा दे देते हैं। पहले ऐसे नियम था, अब तो सब बादशाह हो गया, अब तो कोई किसी के पास मांगता नहीं। किंतु वो लोग टोकरी लेके शाम को आते, सुबह नहीं, और सुबह सफाई करके चले जाते। तो जब बाबा वो अपना माधुगुरी करके जा रहे हैं भंगी, तो बाबा जी रास्ता रोक लिया। बाबा जी बोलते हैं, ए काला मुछी, मुझे चार रोटी दे दे। तो बाबा, ये पंडित और गुसाई लोग जान से मार डालेंगे, क्योंकि आप इतना महान संत हैं, श्रेष्ठ हैं, सब आपकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और आप मुझसे रोटी की टुकड़ा मांग रहे हैं। हमें जीने नहीं देंगे, मार देंगे, एकदम ख़त्म कर देंगे। बोले नहीं, मेरे को देना पड़ेगा तुझे। तो सब मंदिर दिवालय में खबर हो गया, बाबा जी माधुगुरी मांग रहे भंगी से। तो गुस्साई लोग आए, आकर के बोले, बाबा राजभोग रोज दिन आपके लिए भोग के बाद में भेज दिया करेंगे, आप ऐसा अनर्थ मत करो, भंगियों से टुकड़ा अपना मत मांगो, उनका छुआ हुआ नहीं खाना है। तो उन्होंने उत्तर दिया, देख तुम बाबू भुइया हो, जमींदार अमींदार और चटकदार हो, बड़े बड़े खाटपालम को सोने वाले हो, तुमसे ब्रज में से ब्रज से कोई संबंध तुम्हारा नहीं है, तुम ब्रज की सेवा नहीं करते हो। ये भंगी सुबह से लेके झाड़ू बुहारी से सफाई करके दिन रात वो सेवा करते हैं, वो ब्रज का सेवक है। यदि मैं उनका झूठन भी खाऊंगा तो मेरे को सेवा की वृत्ति आएगी, तुम्हारे जैसे बाबू भैया को खाऊंगा ना, भोगी बन जाऊंगा। और भजन नहीं, तुम तो भगवान से बहुत दूर हो, भगवान से तुम अपनी सेवा कराते हो, तो तुम्हारा वस्तु के स्वच्छ करने से मेरा ऐसा भूख बुद्धि आएगा, अब तुम्हारा हम कभी भी छुआ हुआ कुछ पानी भी नहीं पीना है, माधुगुरी तो छोड़ो, तुम्हारा दर्शन भी नहीं करना है। जिनके अंदर सेवा प्रवृत्ति नहीं है, हाँ वो दूसरे को अपना नौकर और सेवक बना करके रखा है, हैं चमचा बना के रखा है, अड़दाली बना के रखा है, हैं वो खुद ही प्रभु और खुद ही बन गया मालिक। कहते हैं निजे हले नारायण कार्यकर निवेदन, मैं खुद गया, खुद हो गया ब्रह्म भगवान, हैं और मैं दूसरे को क्या पूजा और सेवा करूँगा, निवेदन करूँगा, मैं खुद ही ब्रह्म। इससे बाबाजी महाराज जी ने इतना फटकारा और दूत का मैंने गाली गलौज की, डर के मारे कोई भी पास में नहीं आया। फिर देखते हैं बाबाजी महाराज की, यहाँ तो ये लोग भजन करने देंगे नहीं है, तो छोड़ दिया और पैदल चल चल करके, आँख नहीं वो कहाँ, दो महीना की रास्ता, कहाँ पहुँच गए नवद्वीप। क्यों, कुछ दिन पहले जगन्नाथ प्रभु जी महाराज भी पहुँच गए, भक्तिमय ठाकुर आए थे, हैं उन्होंने निमंत्रण दिया आप आ जाइए, तो अंधे लोग कैसे जाएंगे। जगन्नाथ प्रभु जी महाराज तो 145 साल भी उम्र है, टोकरी में उनके बिहारी सेवक टोकरी में लेके चल दी, दो महीना के उससे भी अधिक रास्ता पैदल पैदल चला है, जंगल में जा रहा है, देखा जंगल के अंदर से लाइट आ रहा है, तो बाबा जी महाराज दिख रहा है कि बिहारी पीछे जा रहा है, तो बोले क्यों बिहारी क्या हुआ पीछे क्यों जा रहा है, बोले बाबा जी महाराज लाइट आ रहा है, तो एक लाइट ने दो दो और तेज़ी से बड़ा नज़दीक आ गया, तो बोले क्या हो गया, बोले ये जोरो शेर का आँखें हैं बड़े तेज लाइट है, तो बोले शेर क्या कर गया, तू क्या तू तो सुहा शेर है, वो शेर है तू तो सुहा शेर है, तेरे को भगवान में भरोसा नहीं है, मारे हरी राखे के यदि भगवान बचाने वाले हैं तो शेर क्या करेगा, शेर को भी मंत्र दे दे हरिनाम सुना दे, उनको भूख लगी है कुछ प्रसाद दे दे, तेरे को कुछ देना नहीं आता है, खाली कंजूस तू ही खाएगा पेट भर गया केवल और किसी को नहीं देगा, तो लूटने वाले को दुनिया लूटता है, सोचता है मैं लूटूंगा और कसूट करके अब ले लूँगा, तो आपको लूटने वाला भी कोई कितने और आ जाएंगे। बाबा जी महाराज बोले देख उनको मंत्र दे दे दीक्षा दे दे और प्रसाद दे दे, बस वो महामंत्र सुना दिया बाबा जी महाराज ने और प्रसाद दे दिया हैं, बस वो शेर भी नाचने लग गया और परिक्रमा करके वो तो चला गया। बिहारी देख के आश्चर्य हो गया, बाबा कैसा बाबा जी, इसलिए कहते सिद्ध बाबा हैं, सिद्ध तो सबको सिद्ध बना दे, किसी को जल रहने ना दे, आसक्ति को हटा दे। तो गोरक्षेत्र ब्रज महाराज जब चल रहे थे ऐसे जंगलों में हैं, और गांव देहात कहाँ है, आधा से ऊपर तो जंगल, तो ऐसे पार करके जा रहे, अंधे हैं, खाना नहीं पीना नहीं, केवल बस राधे राधे और चैतन्य महाप्रभु का ध्यान करके हैं बस वो चले जा रहे हैं। जब पहुँचे नवद्वीप में कितने दिनों के बाद, तो वहाँ जा कर के नवद्वीप कुलिया शहर में वहाँ जा कर के बैठ गए गंगा किनारे, वो फटे पुराने नौका होता है उल्टा करके रख देता है, उसके बाद छई उसके नीचे घुस गया और उसके नीचे बैठ करके माला कर रहे हैं मंत्र कर रहे हैं है। कभी माधुकरी करने भी नहीं जाते, कोई आके दे दे ले लेंगे हैं, ओ बड़े बड़े सेठ लोग आया, बोले बाबा जी ठंडा बहुत है एक कंबल बिछा लो एक कंबल ओढ़ लो, बोले मुझे नहीं चाहिए कंबल ही, तो जबरदस्ती दे गया बिछा दिया और एक ओढ़ा दिया, ओढ़ा दिया तो रात भर सो गए खो गए, सुबह उठा बोले वाह बढ़िया हैं कंबल ओढ़ा दिया और बैठाल दिया, रात भर मैं भगवत स्मरण भूल गया सो गया, उठाया गंगा जी में फेंक दिया हैं, पहनना ही नहीं है चाहिए ही नहीं, फिर पानी के अंदर खड़ा हुआ इतना पानी में, तो पूछे बाबा जी क्या कर रहे हैं, बोले क्या करूं ये माया चारों तरफ है घेर लेंगे पकड़ लेंगे तो इससे गंगा जी में पानी के अंदर ये ब्रह्म द्रव्य है भगवान के चरणों के धवन है यहाँ तक खड़े हुए, और सर के ऊपर क्या कर लिया गंगा का बालू पोटली बांध के रख लिया जिससे किसे मतलब ही नहीं है, अब सारा दुनिया आते बाबा आप सिद्ध बाबा है आशीर्वाद दो, दिन रात माधुरी लो कुछ भगवान का प्रसाद खाओ, सारे देवालय से आते हैं बाबा जी महाराज, वो घुस गए म्यूनिसिपैलिटी के लैट्रिन में जहाँ गंदगी का ढेर है, घुसकर दरवाजा बंद कर दी, तो भांगी ये साफ करने बाबा सुन रहे आवाज़ आ रहा है हरिनाम कर रहे हैं, बोले बाबा दरवाज़ा खोलो हम साफ करने आए सफाई करके जाएंगे, बोले क्या सफाई करेगी मेरे को भी सफाई कर दे मेरे गंदगी दूर कर दे, मैं तो जाऊँगा नहीं यहीं रहूँगा, तो जाकर कंप्लेन कर दी चेयरमैन के पास, चेयरमैन ने बहुत चेष्टा किया निकले नहीं, ओ मजिस्ट्रेट आ गया पुलिस आ गया सब आ गया, बाबा आपके लिए कुटिया बना देंगे झोपड़ी बना देंगे आप भजन करो भंग लैट्रिन से निकल जाओ, बोले मेरे बस की नहीं मैं बीमार हूँ उठ नहीं पाता हूँ मैं यहाँ ही रहूँगा जाऊँगा नहीं, तो पूछते आप यहाँ क्यों आए,
इससे तो अच्छा है, विषयी लोग इतना तंग करते हैं, दुर्गंध उसके उससे ये अच्छा है, यहाँ शांति है, यहाँ कोई नहीं आता। बहुत कोशिश की, नहीं निकला। उस समय प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर मायापुर से विनोद विहार ब्रह्मचारी और कुछ ब्रह्मचारी को भेज दिया, जाओ बाबा जी महाराज का दर्शन कर आओ। जब आया दरवाजा खटखटाया, बाबा जी महाराज दरवाजा खोलो। बोले मैं अस्वस्थ हूँ, हमसे नहीं उठाया जाता है, हम नहीं खोल सकते। बोले विमल प्रसाद वासवानवी द्वैत दास आपके जो शिष्य है उन्होंने भेजा है। बोले अच्छा, विमला प्रसाद ने वासवानवी द्वैत दास ने भेजा है, अच्छा अच्छा। दरवाजा खोल दी, खोल करके अब देखो नीचे टाटियों का ढेर है। उस समय कच्चा लैट्रिन होता था, बड़े बड़े बर्तन रखे जाते थे, उसमें टाटी करके जमा होता, भांगी उठा कर फेंके आते। हाँ, रोज़ सफाई करते, कितने कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर गंदगी। अब ये सेवक भी आया तो दरवाज़ा खोला, दर्शन किया, देखो कितने दिन से खाया नहीं पिया नहीं, कोई मतलब नहीं, शरीर से संबंध नहीं है। तो उनसे पूछा, ताप पानी भी नहीं, खाना भी नहीं, भोजन भी नहीं, कुछ नहीं। तो बोले सुखदेव गोस्वामी ने क्या ऋषि महर्षियों को खाना पीना खिलाया, सुलाया, न पानी पिलाया? हाँ, उनको तो भगवत कथा सुनाया, भगवत लीला सुनाया। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सब सुन रहा हूँ, कहाँ कौन क्या कर रहा है, कौन भगवान की गुणगान कर रहा है, हमें सब हम सुन रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, अच्छा है, शांति है। फिर विनोद बिहारी को बोला, देखो तुम्हारा जीवन का पूरा भार मैं लेता हूँ, तुम निश्चिंत होकर भजन करो और प्रचार करो, तो गुरु सेवा करो, सदगुरु मिला है तुम्हें, पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। बोला अच्छा, बाबा जी महाराज इतना आशीर्वाद दिया। फिर बोले बाबा जी महाराज, और हमारा कुछ अनुरोध है, आप थोड़ा स्वीकार करो। बोले अब ये लैट्रिन के अंदर नहीं रहना है बाबा, गंगा किनारे आप जहाँ कहो एक आपके लिए भजन कुटी बना देते हैं, छई अर्थात फूसा फूस दे करके थोड़ा सा हम बना देते हैं आप। तो बोले रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए तो सनातन गोस्वामी ने बना दिया था, वो खुले में धूप में सर्दी में बरसात में खुले में भजन करते थे। एक दिन देखा सनातन गोस्वामी दो शेर राधा कुंड में पानी पी रहे हैं पास में एकदम। बोले ये तो पशु है, इनका बुद्धि कैसा है? इसलिए सुरक्षा के लिए ब्रजवासियों कह करके एक छोटा सा कुटिया बना दी। तो आज बोल रहे हैं परम गुरुदेव, जो आप तो दास गोस्वामी के अनुगत हैं, तो एक छोटा सा कुटिया बना देता हूँ, वहाँ भजन करना। तो बड़े मुश्किल से स्वीकार किया, जल्दी जल्दी करके सेवकों ने दो चार घंटों में गंगा किनारे एक कुटिया बना दी। बाबा जी महाराज कीर्तन करते, हरिनाम करते, कोई आकर पूछते बाबा जी महाराज आज कुछ माधुकुरी ले लो, बोले आज मेरा एकादशी। दूसरे दिन आया पूछा बाबा जी महाराज कुछ ले लो, आज मेरा एकादशी। अभी लगातार 15 दिन एकादशी ही हो रहा है, ले ही नहीं रहे कुछ। तब फिर खबर गया मायापुर चैतन्य मठ में, प्रभुपाद जी को प्रभुपाद जी ने सुना, बोले जब तक सेवक लोग नहीं जाएंगे बाबा कुछ स्वीकार करेंगे नहीं, किसी को साथ तो रखते नहीं, आने देते नहीं, मिलते नहीं हैं। यदि कोई भक्त आया, जैसे भक्तिमत पुरी महाराज, पहले उनका नाम था प्रणवानंद, और एक भक्ति रत्न ठाकुर, पुराण पुराण भक्तिमत ठाकुर के शिष्य, वो लोग बाबा जी महाराज के दर्शन के लिए आते, हरिकथा सुनने आते। बड़े बड़े राजा महाराजा सब कथा सुनने आते हैं। तो कीर्तन कथा करे तो खुश है। एक दिन जा रहे हैं, भागवत सप्ताह कर रहा है गोसाई, जाति गोसाई, तो गंगा जी के किनारे किनारे जा रहे हैं, सुना खड़े हो गए, जहाँ भागवत हो रहा है खड़े हो गए। और वो भागवत कर रहा है, बाबा जी को देख करके उठ के आया, सम्मान किया, बैठाया, कथा सुनो बाबा, बोले तू भागवत कर रहा है कि टाकाटा सिकीटा कर रहा है, हैं कितना प्रणाम आया, कितने लोग खुश हो गया, कितना मेरे को सम्मान मिला, कितना दक्षिणा आ रहा है, ये दिख रहा है, क्या भागवत कर रहा है तू, क्या बोल रहा है? बस इतना लाताड़ा जो श्लोक वो बोल रहे हैं, एक एक श्लोकों की व्याख्या, बोले तूने ये व्याख्या किया इन लोगों के सामने, हैं लोगों को बहका रहा है, ठगी नंबर ठग, इतना गाली दिया और भागवत पूरा की पूरा सब सुना दिया। पहले भागवत बन, फिर भागवत करना, हैं अपने को भक्ति रस से सराबोर करो, तब भक्ति दूसरे को दे सकता है, नहीं तो क्या देगा, हैं। अब वो एक दिन आधी रात को भक्तिम ठाकुर जी के गोदर में पहुंच गए, तो भक्तिम ठाकुर पूछते हैं, वर्षा के दिन है, इतना बाढ़ आ रहा है गंगा जी में, 5 किलोमीटर चौड़ी हो गई है, छोटा नहीं, तो आप आधी रात को नौका नहीं कुछ नहीं कैसे पार करके आए? बोले मेरे भाई एक बालक आया, बोले बाबा भक्तिम ठाकुर ने निमंत्रण दिया, भंडारा कर रहे हैं, हाँ सारे ब्रज को निमंत्रण दिया, सारे सब आए उत्सव कर रहे हैं, तो आपको भी चलना है, तो बोले मैं कैसे चलूँ? बोले मेरा हाथ पकड़ लो, हाँ हम अभी ले जाते हैं। तो उसने हाथ पकड़ा और पता नहीं कौन से रास्ते से मुझे ले आया, और तुम रात के 12 बजे 1 बजे भंडारा करते हो, हैं? तो बोले आपको कैसे पता लगा क्या बना रहा हूँ? बोले पूड़ी बनाया, पकवान बनाया, और हलवा बनाया, पकौड़े बनाए, और सुंदर सुंदर रसाले बनाया, सुंदर सब्जियाँ बनाया, हैं तुमने पूरा ब्रज को निमंत्रण करके और सबको खिलाया, हाँ मुझे पता नहीं है, मुझे सब पता है। तो बोले बाबा अब यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ भजन करो, नित्य उत्सव है यहाँ, हाँ ये गोद्रुम है, हैं जहाँ गोप गोपी गोप गोपाल सब विराजमान है, अब जाने की ज़रूरत नहीं, हैं बाबा जी महाराज कहते हैं नहीं मैं तो नित्यकाली विराजमान हूँ, मैं जाने वाला नहीं हूँ। बस भक्तिम ठाकुर जी के साथ आलोचना चल गया। भक्तिम ठाकुर जी प्रतिदिन जब भगवान रास में जाते तो ब्रजदेवी का अनुगत्य में सुंदर सुंदर रसोई बनाते, इतना सुंदर सुंदर और उपायन बना करके बस वहाँ पर पहुँचाते। तो बाबा जी महाराज उन कैसे अंतर्जामी सब देख रहे हैं क्या कर रहा है, हैं फिर जब बाबा जी महाराज को प्रसाद आदि दिया, बड़े आनंद से स्वीकार किया, और दूसरे दिन क्या देखा, बाबा जी महाराज धोती कुर्ता पहन के एकदम शांतिपुरी धोती कुर्ता पगड़ी और सुंदर वेश बना करके हैं चले। तो भक्तिम ठाकुर कहते हैं ये कौन सा वेश है, आप सिद्ध बाबा है, हैं ये क्या वेश बनाया? बोले जितना भ्रष्ट बाबा जी का वेश पहन करके परमहंस का वेश पहन करके अत्याचार करते हैं, हैं गोरारामी गोरारामी मुख बोले नहीं चले, गोराचार गोरार विचार ले लेते हुए फल फले, हैं वो तो माथा नला कोपनी आटा यह तो एक कलर चला देखते वैष्णवर मत आसल शक्त काजर बेला संगे ले घुरचे मामू देखवार पर बेला। ये बाबाजी का बेस बना करके भ्रष्ट दूसरे को ठगते हैं और व्यभिचार करते हैं, तो ये बेस अब नहीं पहनना है, अभी मैं सुंदर धोती कुर्ता पहन के और सज करके रहूँगा, ऐसे भ्रष्टों के साथ नहीं रहना है। इससे उन्होंने अपने प्रभुपाद श्रेष्ठ ठाकुर जी को आदेश दिया, देख वर्णाश्रम धर्म को चालू कर, हैं ब्रह्मचारी को हैं लाल कपड़ा दो और सन्यास दो, हैं सन्यास ग्रहण करो, बाबा जी वेश नहीं, क्योंकि कोई भी आया बाबा जी बना दिया, और कुछ सीखा नहीं जाना नहीं कुछ गुरु का अनुगत्य करा नहीं और कुछ साधन करा नहीं, बस एक दिन ने परमहंस भेज दे दिया। तो बाबा जी महाराज बहुत सख्त कट्टर, उन्होंने पूरा नवद्वीप धाम में भ्रमण करते, तो कोई उनको कच्चा बैगन दे देता, कोई आलू दे देता, कोई मूली दे देता, बस उसको लेके गंगा पानी में धोधा करके बोलते बाबा जी महाराज इसमें कीड़े हैं। बोले कोई बात नहीं है, कीड़ा है तो अपने जगह पर है, मेरे को क्या लेना देना है, मैं तो उनको समर्पण कर दिया। बस कच्चा कुछ चबा लिया, खा लिया, कोई मतलब नहीं। कभी मुसलमान के घर पहुंच गया, कभी हिंदू के घर, उनको कोई मतलब नहीं। कभी बाबा जी महाराज आए गंगा से तो जो झोपड़ी में एक सिक्का में टान करके कुछ माधुकुरी मिला तो रख दिया, तो पड़ोसी अगर बोलते बाबा जी ये सांप चढ़ गया, सांप कुछ रखे थे आपने, सांप ने खा लिया, इसको मत छूना मत खाना, तो उनको कोई मतलब नहीं। एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, चार बार बोला, वो कोई जवाब नहीं दी। फिर बोलने लगे तो बोले देख एक सांप है, इसके जहर खाने से मेरा एक जन्म नष्ट होगा, और तुम काल सांप हो, तुम्हारे बात सुनने से मेरा 10 जन्म नहीं करोड़ों जन्म नष्ट होगा। है जहर खा के मरने से कोई बात नहीं है, मैं मर जाऊँगा, एक ही तो जन्म जाएगा, और तुम्हारे बात सुनने से तुम मोहम्मदता से फंसा करके और मेरा जन्म जन्मांतर नष्ट करोगे, तुम काल नागिन हो, चलो यहाँ से। इतना फटकारा, तो उनको क्या लेना देना है दुनिया से। इससे प्रभुपाद जी ने समय समय पर सब समय सेवकों को भेज देते, क्योंकि एकादशी कर जा रहे महीनों तक, कभी कुछ ग्रहण नहीं, अन्न जल कुछ नहीं। तो प्रभुपाद जोगपीठ से मायापुर से भगवान के भोगराग, कभी भक्तिमय ठाकुर, कभी जगन्नाथ देव बाबा जी महाराज के सेवक बाबा जी महाराज के लिए माधुकुरी अर्थात प्रसाद भेज देते। बात प्रसाद आया तो सम्मान किया, आदर किया, ग्रहण किया, और नहीं तो विषय का अन्न कभी ग्रहण नहीं करते। कोई देवालय नवद्वीप में बहुत अच्छे अच्छे मंदिर है, देवालय हैं प्राचीन सब, तो वो लोग निमंत्रण देते, बोलते तुमने जीवन में कभी हरि कीर्तन किया, हरिनाम किया, गुरुमंत्र जप करते हो, हैं तुम्हारा जितना दक्षिणा है, जितना दान है, तुम अपने परिवार पालन करते हो, और भगवान को भी तुम अपने चमचे बना लिए हो, व्यापार के मुड्डा बना लिया, वो किसी को छोड़ने वाले नहीं। तो आज के दिन में जब नित्यधाम में पधारे तो प्रभुपाद जी को खबर मिली, प्रभुपाद जी आए, बाबा जी लोगों ने सब तय कर लिया। क्या तय किया? जब गोरक्षदास बाबा जी महाराज अंतिम यात्रा कर रहे हैं तो नज़दीक के लोगों को बोला देखो मैं जीवन में भजन तो किया नहीं, धाम की सेवा किया नहीं, कुछ शुभ कार्य किया नहीं, भक्ति की नहीं, तो मेरे पैर में रस्सी बांध करके और सड़क में घसीटते घसीटते ले करके गंगा जी में फेंक देना। तो उन लोगों ने मोटे मोटे रस्सी मंगाया, बाबा जी दोनों पैर में बांध देंगे और घसीटेंगे घिस घिस करके, बोलते हैं मेरा शरीर के चमड़ी और दमड़ी सब रज में मिल जाए और फिर फेंक देना जमुना दरिया में, गंगा में फेंक देना। तो तैयार हो गया, प्रभुपाद आए, प्रभुपाद बोले कोई भी मेरे गुरु महाराज के शरीर को स्पर्श न करे, ये अपराकृत कलेवर को ऐसे घसीटने के लिए किसी का सामर्थ्य नहीं है, जब तक मैं उनका अकेला शिष्य हूँ और मैं ही एक ही शिष्य हूँ और कोई शिष्य भी नहीं है। वो लोग बोले नहीं, उन्होंने मेरे बाबा जी भेज दिया, मेरे को दीक्षा दिया, मैं शिष्य हूँ। बोले उसका प्रमाण दो, बोले तो आप प्रमाण दो। उन लोगों ने प्रभुपाद जी आप प्रमाण दो, आप शिष्य हैं। बोले आप शिष्य है, आप प्रमाण दो। बोले हम बाबा जी के अंतिम आदेश पालन करेंगे। लाखों बाबा जी इकट्ठे हो गए और झगड़ा उठ बहुत विशाल रूप धारण की, पुलिस आ गया, मजिस्ट्रेट आ गए, उनने और समर्थ लोग ब्राह्मण लोग बाबा जी को पक्ष लिया, सब भक्त प्रभुपाद जी के विरोधी है, हैं, अब झगड़ा तो बहुत। प्रभुपाद जी के साथ में दो सेवक है और इधर हजारों ने लाखों हो गया इकट्ठा, बहुत भीड़ सुबह से लेके दोपहर या शाम होने जा रहा है और झगड़ा बढ़ते जा रहा है, मार मार काट काट हो गया और उससे लाया बांधेंगे घसीटेंगे। प्रभुपाद बोले ऐसे नहीं होने दूंगा। हाँ, इसके बाद में जब मजिस्ट्रेट के पास विचार गया, वहाँ खड़े हैं सब, बोले ये लोग बोलते हैं शिष्य है, आप बोलते हैं शिष्य है, तो आप प्रमाण दो। प्रभुपाद जी को बोला, तो प्रभुपाद बोले ठीक है, वो बाल ब्रह्मचारी था और त्यागी परमहंस महापुरुष, भगवान के सेवक, भगवान के प्रिय, तो ये कोई भी कहे कि ये बाबा जी वेश धारण किया, ये कोई भी ब्रह्मचारी है, किसने व्यभिचार नहीं की और वेश लेने के बाद में भी व्यभिचार नहीं की, यहाँ तक कि 6 महीना हैं, ओके नहीं तो 1 महीना, आखिरी प्रभुपाद बोले कल रात तक भी ये क्या अपने चरित्र को हैं कंट्रोल किया, व्यभिचार से लिप्त नहीं रहे, और यदि ऐसा हो तो ये उनका प्राकृतिक कलवर स्पर्श करे, नहीं तो स्पर्श करे तो उनका सर्वनाश अभी अभी देख लेंगे हो जाएगा। प्रभुपाद इतना गंभीर ऐसे नृसिंह मूर्ति धारण किया, ऐसे बोलने लगे, तो धीरे 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 बाबा जी थे सब चले गए, एक भी नहीं रहा, वो ब्राह्मण लोग चले गए। अब मजिस्ट्रेट क्या करे, मजिस्ट्रेट बोले अब आपका कार्य आप करो। प्रभुपाद जी ने गोदी में उठा ली, जैसे हरिदास ठाकुर जी ने को महाप्रभु ने गोदी में उठा लिया, प्रभुपाद जी ने गोदी में उठा लिया, लेकर के गंगा किनारे हैं शिवों को लेके हरिकीर्तन के साथ उनको स्नान आदि कराया, तिलक कराया, वस्त्र नया पहनाया, आरती करा, भोगराग दिया दे करके उनको समाधिस्थ की, और वहाँ प्रभुपाद जी ने कुछ उनका स्मृति बनाने के लिए व्यवस्था की, किंतु वहाँ के एक जमींदार थे, उसने उनके जमीन में ही समाधिस्थ किया था, तो कुछ दिन तक तो बड़े पूजा पाठ करते और सम्मान करते सबको, इसके बाद वो क्या करने लगे, बस बिजनेस शुरू कर दी, व्यापार। आज बाबा जी महाराज जी का तिरुभाव तिथि है, आज आविर्भाव तिथि है, इतना कलेक्शन करने लगे और फिर वही उद्यम मचाना शुरू कर दी, और इतने में गंगा देवी आई, गंगा देवी का तो अता पता नहीं, कभी इधर तोड़े कभी उधर तोड़े, जब तोड़ने के लिए तोड़ने लगे तब प्रभुपाद जी ने विनोद बिहारी को भेज दिया, जाओ ये समाधि को पूरा मायापुर ले आओ। अब विनोद बिहारी तो विनोद बिहारी, मैनेजर और सेवकों को लेके पूरा पूरा की पूरा उठा करके पालकी में सजा करके और लेके चलाया, वो भी कितने वर्षों के बाद। अब उनने कोर्ट केस कर दी उसमें ब्रिटिश हैं, विनोद बिहारी के नाम, प्रभुपाद के नाम और सबके, और कोर्ट में गए जज के पास, विचार चला, तो विनोद बिहारी जवाब देते हैं ये क्रिश्चियनिटी नहीं है, हैं क्रिश्चियन का ग्रेवियार्ड कभी परिवर्तन नहीं होता, किंतु हमारे सातत्व संहिता वैष्णव धर्मों में वैष्णवों के नित्य कलेवर है, अप्राकृत है, और जैसे प्रकट अवस्था में गमनागमन करते हैं ऐसे अप्रकट लीला में भी वो नित्य स्वरूप में है, उनकी इच्छा है वो कहीं भी गमनागमन कर सकते हैं, उनका आदेश है। यदि आपको विचार करना है तो उनके आदेश निर्देश के ऊपर, आपके आदेश निर्देश हम नहीं मानेंगे, हमारा आदेश निर्देश आपको मानने की जरूरत नहीं है, उनके पास प्रार्थना करो, वो आपको क्या आदेश देते हैं आप तब सुनो, तब आप विचार करना। अब जज के पास क्या सामर्थ्य है, क्या अप्राकृत आदेश उपदेश, किंतु फिर क्या हुआ, जज गया घर में हैं, आज उनको बड़ा बेचैनी हो गया, एक तरफ ब्रिटिश का शासन, एक तरफ बाबा जी का स्मार्टों का हैं, वो क्या करे, कैसे जजमेंट दे, उस समय क्या देख रहे हैं, सारे साधु लोग उनके पास आ गए, बोले हमारा जहाँ इच्छा हम वहाँ रहेंगे, जहाँ पर अत्याचार होता है व्यभिचार होता है हम वहाँ नहीं रहते, जहाँ पर हैं समस्त शुद्ध भक्ति का अनुष्ठान होता है हम वहाँ ही रहते हैं, बस दूसरे दिन कोर्ट में जज ने डिसमिस डिग्री दे दी मायापुर को, चैतन्य मठ को, क्योंकि उन्होंने समस्त स्पष्टीकरण कर दिया कि भक्त भक्ति के अनुष्ठान जहाँ होते हैं वहीं रहते हैं, जहाँ पर अत्याचार होता है, व्यभिचार होता है, वहाँ पर कभी भी वो लोग नहीं रहते, चाहे कैसा भी हो। बहुत शास्त्रों के परम गुरु जी ने वहाँ पर उदाहरण दिया। फिर समाधि मायापुर में हुआ, मंदिर बना, आज भी वहाँ पर नित्य सेवा चल रहा है, क्योंकि भगवान नित्य है, उनके सेवक भी नित्य है। नित्याय चरण सत्य ता सेवक नित्य, नित्याय पद सदा करास, नित्यानंद प्रभु नित्य है तो उनके सेवक भी नित्य है। इसलिए बाबूजी महाराज गया वहाँ पर, समाधि और नित्य सेवा वहाँ चल रहा है। अब हम लोग शाम को सुनेंगे, अभी तो टाइम बहुत हो गया, अभी परिक्रमा जाना है, फिर एकादशी है, अब कल आज शाम को सुनेंगे। गौर प्रेमानंद।